जब भी हम किसी बहुत कीमती हीरे को देखते हैं ना, तो दूर से वो बिल्कुल चमकदार, ठोस और बेदाग लगता है।
बिल्कुल, एकदम परफेक्ट।
हाँ, मतलब देखने वाले को यही लगता है कि इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब कोई जौहरी उस हीरे पर अपना वो छोटा सा लेंस होता है वो लगाता है, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही बारीक दरार दिख सकती है, एक माइक्रो फ्रैक्चर।
सही कहा। और यही बात दुनिया के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक बुक ऑफ जॉब के मुख्य चरित्र पर भी लागू होती है।
एग्जैक्टली। आज के इस गहन चर्चा में हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के एक बहुत ही रोचक विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। उन्होंने इस किताब के पहले अध्याय के शुरुआती 5 श्लोकों की, जिसे सीन ऑन अर्थ कहा गया है, उसकी बहुत गहरी पड़ताल की है।
और उनका ये जो लेंस है ना, वो इस चरित्र के अंदर, जिसे सदियों से बिल्कुल निष्कलंक माना गया है, उसके अंदर एक ऐसी मनोवैज्ञानिक दरार को उजागर करता है जो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देती है।
मुझे तो ये पढ़कर ही बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि हम अक्सर पुरानी कहानियों को बस सतह पर पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं ना, हम उनके सबसे चौंकाने वाले विवरणों को अनदेखा कर देते हैं।
बिल्कुल, उस बारीक दरार की सबसे बड़ी खासियत ही यही होती है कि वो बाहर से दिखाई नहीं देती। इंसान बाहर से बहुत मजबूत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो दरार उसके पूरे आंतरिक ढांचे को कमजोर कर देती है।
यानी हल्की सी चोट लगने पर वो पूरा का पूरा बिखर सकता है।
हाँ, और डॉक्टर वॉल्टन का शोध हमें यही बताता है कि जॉब, जो सदियों से धार्मिक पूर्णता का प्रतीक है, उसके अंदर भी एक ऐसी ही छिपी हुई कमी थी, एक ऐसी कमजोरी जिसने शायद उसके जीवन में आने वाले तूफान को एक तरह से निमंत्रण दिया।
लेकिन देखिए, ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है। एक तरफ सदियों की परंपरा है जो जॉब को सबसे आदर्श मानती है, और दूसरी तरफ ये विश्लेषण उसे कमजोर बता रहा है।
इसे समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा।
राइट। मतलब उसकी मानसिकता को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो आता कहाँ से है, कहानी उसे किस तरह पेश करती है। स्रोत के मुताबिक जॉब उस नाम के देश का रहने वाला है।
हाँ, उस देश।
एक साधारण इंसान के लिए तो ये किसी मतलब जादुई या काल्पनिक जगह जैसा लगता है।
और उस समय के प्राचीन इजरायली श्रोताओं के लिए भी ये एक रहस्यमयी जगह ही थी। ओज असल में जानी मानी दुनिया के बिल्कुल किनारे पर था। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि इसे आमतौर पर सीरियाई रेगिस्तान के पास माना जाता है।
मतलब एदोम के पास कहीं।
बिल्कुल। और अगर हम सेप्टुआ जॉइंट की बात करें, जो इब्रानी बाइबल का सबसे प्राचीन ग्रीक अनुवाद है,
अच्छा,
तो उस अनुवाद में उसको इडुमिया और अरब के बीच बताया गया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जॉब के जो दोस्त उससे मिलने आते हैं, जैसे तेमन से आया हुआ उसका एक दोस्त, वो भी उसी दक्षिणी क्षेत्र से आते हैं।
हाँ, जो अपनी प्राचीन विजडम या बुद्धिमत्ता के लिए काफी जाना जाता था।
एकदम सही।
यहाँ एक और बहुत बड़ा तथ्य सामने आता है। जॉब खुद कोई इजरायली व्यक्ति नहीं था, राइट? वो तो एक बाहरी व्यक्ति था,
बिल्कुल,
एक आउटसाइडर।
हाँ, उस धर्म का हिस्सा नहीं था।
फिर भी ये पूरी की पूरी किताब इजरायली मुद्दों और उनके ईश्वर पर चर्चा करती है। श्रोत में एक छोटी सी पर बहुत दिलचस्प डिटेल दी गई है। वहां लिखा है कि जॉब एलोहिम से डरता था, यावे से नहीं।
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
मतलब एक साधारण श्रोता के लिए जो ये प्राचीन भाषा नहीं जानता, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये अलग अलग देवता थे?
ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, प्राचीन इसराइल में एलोहिम और याहवे दोनों शब्दों का इस्तेमाल ईश्वर के लिए होता था, पर उनके संदर्भ बिल्कुल अलग थे।
अच्छा, कैसे?
एलोहिम एक बहुत ही सामान्य या जेनेरिक शब्द था। इसका मतलब किसी भी अलौकिक शक्ति, देवता या सृष्टिकर्ता से हो सकता था। दूसरी तरफ याहवे ईश्वर का वो निजी नाम था जो खास तौर पर इसराइलियों के साथ उनके समझौते यानी कोवेनेंट को दर्शाता था।
ओह, तो जब वो कहते हैं कि वो एलोहिम से डरता था,
तो इसका सीधा मतलब यह है कि जॉब के पास इसराइली ईश्वर का कोई निजी या गहरा ज्ञान नहीं था। उसका ईश्वर के साथ कोई, जैसे हम पर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो नहीं था।
मतलब बस एक आम सृष्टिकर्ता के प्रति सम्मान और डर था।
बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे योना की किताब में जो समुद्री नाविक थे, या उत्पत्ति की किताब में अबीमेलेक का चरित्र। वो लोग भी इसराइली नहीं थे, पर एक अनजान ईश्वर से डरते थे।
तो कहानी लिखने वाले ने जानबूझकर एक आउटसाइडर को इतनी बड़ी धार्मिक परीक्षा के बीचों बीच खड़ा कर दिया, और कहानी उसे सिर्फ एक अनजान जगह का निवासी ही नहीं बनाती, उसके पूरे अस्तित्व को चरम सीमाओं में, मतलब एब्सोल्यूट एक्सट्रीम्स में चित्रित करती है।
हाँ, उसका चित्रण बहुत ही एक्सट्रीम है।
स्रोत के अनुसार उसके चरित्र के लिए ताम शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब निष्कलंक है, और कर्मों के लिए याशर यानी ईमानदार। और अगर दौलत की बात करें,
दौलत तो उसके पास ऊंट भेड़ बकरियों की ऐसी विशाल संख्या थी जो उस दौर के हिसाब से लगभग असंभव थी।
बिल्कुल, मतलब मैं सोच रही थी अगर इसे एक कहानी के ढांचे से देखें तो ये तो किसी ऐसे सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा लगता है, जिसमें कोई कमी ही नहीं है। वो सबसे नेक है, बेदाग है और अथाह दौलत का मालिक है,
एकदम परफेक्ट इंसान।
हाँ, पर यहीं पर एक सवाल उठता है, अगर वो इंसान इतना ही परफेक्ट है तो आखिर इस पूरी कहानी में असल द्वंद्व यानी कॉन्फ्लिक्ट कहां से पैदा होने वाला है?
और यहीं पर डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण बहुत काम आता है। वो समझाते हैं कि इन चरम सीमाओं का इस्तेमाल लेखक ने जानबूझकर आसान जवाबों को खत्म करने के लिए किया है।
आसान जवाब मतलब किस तरह के जवाब?
देखिए, अगर जॉब गरीब होता या वो पहले से ही एक पापी इंसान होता तो जब उस पर कष्ट आते तो लोग बड़ी आसानी से निष्कर्ष निकाल लेते।
ओह, वो कहते कि इसने पाप किया है इसलिए इसे सजा मिल रही है।
बिल्कुल, लोग कहते कि ये तो कर्मों का फल है। जॉब को बिल्कुल निर्दोष, श्रेष्ठ और अमीर बनाकर लेखक ने शुरुआत में ही इस सीधे साधे कॉज एंड इफेक्ट वाले ज्ञान को चुनौती दे दी है।
वाओ, यानी श्रोताओं को पहले ही बता दिया गया है कि तुम्हारे पास जो सस्ते जवाब है वो यहाँ काम नहीं आएंगे।
ये बहुत ही प्रभावशाली तकनीक है।
हाँ, ये बहुत ही गहरी चाल है कहानी की।
लेकिन देखिए, जब किसी इंसान के पास इतनी भारी दौलत और इतना बड़ा आदर्श रुतबा होता है ना, तो उस पूर्णता को बनाए रखने का बोझ भी बहुत बड़ा होता है।
बिल्कुल, उस रुतबे को संभालना आसान नहीं है।
और इसकी झलक हमें स्रोत के उस हिस्से में मिलती है जहाँ उसके घर के माहौल की बात होती है। स्रोत बताता है कि जॉब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं और ये लोग लगातार दावतें करते रहते थे। एक तरह से उनका बर्थडे पार्टीज का चक्कर ही चलता रहता था।
हाँ, लगातार आयोजनों में व्यस्त रहते थे। पर मुझे जो सबसे अजीब हिस्सा लगा वो ये था कि इन दावतों के खत्म होने के बाद क्या होता था।
जॉब अगली सुबह उठकर उन सभी बच्चों को शुद्ध करता था और उनके लिए बलि चढ़ाता था,
वो भी हर दावत के बाद।
ठीक कहा आपने, और यही वो जगह है जहां हमें उस मनोवैज्ञानिक दरार की, उस कमजोरी की पहली झलक मिलती है।
ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। एक आम श्रोता सोचेगा कि इसमें बुराई क्या है, एक पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, पर जब हम उसका कारण पढ़ते हैं तो वो बहुत विचित्र लगता है।
हाँ, उसका कारण बहुत दिलचस्प है।
जॉब सोचता था कि शायद मेरे बच्चों ने पाप किया हो और अपने हृदय में ईश्वर को श्राप दिया हो। मतलब क्या ये चरम स्तर की हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं है? कोई व्यक्ति उन पापों के लिए बलि कैसे चढ़ा सकता है जो शायद कभी हुए ही ना हो? ये भक्ति से ज्यादा एक पैरानोया लगता है।
मुझे पैरानोया आ कहां से रहा है? इसे समझने के लिए हमें उस समय की प्राचीन संस्कृति को देखना होगा। डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि जब जॉब कहता है कि बच्चों ने अपने हृदय में पाप किया होगा, तो इसका मतलब आज के आधुनिक हिसाब से अकेले कमरे में सोचना नहीं है।
अच्छा, तो फिर हृदय में का क्या मतलब था?
प्राचीन समाज व्यक्तिवादी नहीं था, वहां समुदाय अहम था। व्यवस्था विवरण या भजन संहिता जैसे ग्रंथों के संदर्भ में हृदय में का मतलब होता था सामूहिक बातचीत, यानी कॉर्पोरेट कॉन्वर्जेशन।
ओ, मतलब जब वो दावत में एक साथ बैठे हों।
बिल्कुल, जब बच्चे एक झुंड में हों, खा पी रहे हों, हंसी मजाक चल रहा हो, तो उस आजाद और खुले माहौल में कहीं उन्होंने बिना सोचे समझे ईश्वर के बारे में कोई गलत बात ना कह दी हो।
मतलब जॉब इस बात से डरा हुआ नहीं था कि कोई बच्चा अकेले में क्या सोच रहा है, बल्कि वो उनकी लापरवाही भरी बातों से डर रहा था।
हाँ, और इसी डल को पूरी तरह से समझने के लिए हमें मूल इब्रानी यानी हिब्रू भाषा में छिपे एक बहुत ही बड़े रहस्य को देखना होगा।
हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब मैं स्रोत पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि मूल पाठ में शाप के लिए किसी शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं हुआ।
वहाँ आशीर्वाद या ब्लेस शब्द का इस्तेमाल एक व्यंजना यानी यूफेनिज्म के रूप में किया गया है। जॉब असल में कह रहा है कि शायद मेरे बच्चों ने ईश्वर को आशीर्वाद दिया हो। ये तो बहुत ही विरोधाभासी है, ऐसा क्यों?
प्राचीन समय में धार्मिक भाषा को लेकर लोग बहुत संवेदनशील थे। ईश्वर और शाप शब्द को एक ही वाक्य में एक साथ रखना बहुत ही बुरे स्वाद का यानी बैड टेस्ट का प्रतीक माना जाता था।
मतलब उसे अपवित्र माना जाता था।
इसलिए लेखक ने शाप की जगह आशीर्वाद शब्द का इस्तेमाल किया, पर जो भी उसे पढ़ता वो समझ जाता कि यहाँ आशीर्वाद का असली मतलब शाप देना ही है।
और ये सिर्फ एक अनुवाद का मामला नहीं है, पूरी कहानी में इस शाप और आशीर्वाद का बहुत गहरा खेल चलता है। जैसे जो चैलेंजर है वो दावा करता है कि जोब ईश्वर को उसके मुंह पर आशीर्वाद देगा यानी शाप देगा।
हाँ, और बाद में जोब की पत्नी भी कहती है कि ईश्वर को आशीर्वाद दो और मर जाओ, यानी शाप दो और मर जाओ।
लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है, जो भयानक आयरनी है, वो ये है कि ईश्वर का जोब को आशीर्वाद देना, मतलब उसकी मौखिक प्रशंसा करना, ही वास्तव में जोब के लिए एक शाप बन जाता है।
एकदम सही,
क्योंकि उसी प्रशंसा के कारण ही तो चैलेंजर उसे अपना निशाना बनाता है।
बिल्कुल, जिसे सच में आशीर्वाद माना जाना चाहिए था वही उसके विनाश का कारण बन गया।
लेकिन एक सवाल और उठता है, उस प्राचीन जमाने में ईश्वर को शाप देने का असल मतलब क्या था? क्या इसका मतलब सिर्फ गुस्सा करना या गालियां देना था?
नहीं, प्राचीन संस्कृति में इसका आयाम थोड़ा अलग था। ईश्वर को शाप देने का अर्थ था उसे शक्तिहीन मानना, उसे भ्रष्ट मानना या उसका अपमान करना,
मतलब उसके चरित्र पर सवाल उठाना।
हाँ, या फिर उसे मैनिपुलेबल मानना कि ईश्वर को थोड़े से अनुष्ठान या बलि चढ़ाकर अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। बाद में जोब गुस्सा जरूर होता है पर वो कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता।
पर अगर जॉब इतना ही नेक था तो वो हर सुबह उठकर इन डरी हुई बलियों में क्यों उलझा रहता था? क्या ऐसा हो सकता है कि जॉब का हर वक्त बलि चढ़ाना वास्तव में ईश्वर पर विश्वास की कमी को दर्शाता है?
और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा खुलासा होता है, वो चिनक इन दी आर्मर, यानी सबसे बड़ी कमजोरी। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि जॉब के ये अनुष्ठान हमें उसके बच्चों के बारे में नहीं बताते।
तो किसके बारे में बताते हैं?
ये बताते हैं कि जॉब ईश्वर के बारे में क्या सोचता है। जॉब को लगता था कि दोस्तों के बीच की गई अनजाने और मासूम बातों से भी ईश्वर नाराज हो सकता है।
ओह, मतलब वो ईश्वर को बहुत ही गुस्सैल मानता था।
हाँ, इसकी तुलना एक असीरियन प्रार्थना से की जाती है जिसे प्रेयर टू एवरी गॉड कहा गया है। उस प्रार्थना में एक व्यक्ति बहुत डरा हुआ है कि कहीं उसने अनजाने में किसी पवित्र स्थान पर पैर तो नहीं रख दिया
या किसी ऐसे देवता को नाराज तो नहीं कर दिया जिसे वो जानता तक नहीं।
बिल्कुल, वो लगातार डरा रहता है। और जॉब की मानसिकता भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो ईश्वर को एक बहुत ही संकीर्ण यानी पेटी और आसानी से नाराज होने वाली सत्ता मानता था
जिसे खुश करने के लिए लगातार अनुष्ठान करने पड़ते हैं।
हाँ, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका फायदा चैलेंजर उठाता है।
तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है अगर मैं इसे आज की रोजमर्रा की स्थिति से जोड़ूं? तो ये तो वैसा ही है जैसे किसी बहुत ही गुस्से वाले और अनप्रिडिक्टेबल बॉस के सामने काम करना।
बहुत ही सटीक उदाहरण है ये।
मतलब आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कोई नए आइडियाज नहीं ला रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बॉस के मूड को मैनेज कर रहे हैं, आप हर वक्त फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि कहीं बॉस भड़क ना जाए।
बिल्कुल, और ऐसे माहौल में आप कभी कोई गहरा और सच्चा रिश्ता नहीं बना सकते। वहाँ सिर्फ डर पर आधारित एक लेन देन होता है, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन।
राइट।
चैलेंजर भी यही सोचता है कि जॉब ईश्वर से भक्ति के कारण नहीं जुड़ा है बल्कि उसने ईश्वर के गुस्से को मैनेज करना सीख लिया है। और डॉक्टर वॉल्टन यही कहते हैं कि जो चीजें बाहर से परफेक्ट और आदर्श लगती हैं, परफेक्ट पायटी लगती हैं, वो असल में गहरे डर और अविश्वास पर दिखी हो सकती हैं।
वाओ, मतलब जॉब की असली समस्या उसका व्यवहार नहीं था बल्कि ईश्वर को संकीर्ण समझना था। ये चर्चा सच में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपने जीवन, रिश्तों या कैरियर में सही काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम किसी अदृश्य सजा से डरे हुए हैं।
हाँ, अक्सर हम डर के कारण ही अनुष्ठान या नियम निभाते हैं।
बिल्कुल, और ज्ञान तब सबसे मूल्यवान होता है जब वो हमें हमारे ही गहरे विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करे। इस श्रोत सामग्री ने कई परतें खोल दी हैं और जाते जाते एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है।
वो क्या?
अगर चरम पूर्णता हर वक्त गलतियां सुधारने की चिंता और अनुष्ठानों के जरिए सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश ही वास्तव में विनाश को निमंत्रण देती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सच्ची समझदारी तब शुरू होती है जब हम जीवन की अनिश्चितताओं को मैनेज करना छोड़ देते हैं?
बहुत गहरी बात है।
हाँ, मतलब ये स्वीकार कर लेना कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते, शायद वही आजादी है।
बिल्कुल, उस छलावे से बाहर आना बहुत जरूरी है।
सही कहा। तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।